ईश्वर का ध्यान ईश्वर के लिए किया जाता है, सत्संग अपने कल्याण के लिए सुना जाता है, उपदेशक बनने के लिए सत्संग नहीं, लोगों को ठगने के लिए सत्संग नहीं। अपना जीवन सत्य स्वरूप ईश्वर में लगाने के लिए सत्संग है। सत्संग प्रवचन अपने कल्याण के लिए है, अपने मंगल के लिए, स्वांत सुखाय के लिए। अपने स्वरूप के सुख में डूबने के लिए सत्संग है, और डूब कर जो बोला जाए वही सत्संग है। ईश्वर के नाते ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर के लिए ईश्वर की बात सुने, ईश्वर के लिए ईश्वर की बात बोले। वाहवाही के लिए, पैसा कमाने के लिए, यश कमाने के लिए वे घाटे में रह जाते हैं। चार प्रकार से भक्ति का रस सूख जाता है। दुर्जनों और निंदकों का संग करने से श्रद्धा भक्ति का रस सूख जाता है। उपदेशक बनने से प्रेम रस सूख जाता है। निंदकों का दुर्जनों का संग से विभक्ति प्रेम रस सूख जाता है। अशुद्ध आहार और व्यवहार करने से भी सच्चाई का रस सूख जाता है। शास्त्र और गुरु में अश्रद्धा होने लगे तो भी आनंद और भक्ति का रस सूख जाता है। इन चार दुर्गुणों के कारण घोर पतन हो जाता है। उस समय पता नहीं चलता, हम पतन उसी को मानते हैं जो ईश्वर के रास्ते से विमुख हो जाए और संसार को सत्य मानने लग जाए, तो हम उसको पतन मानते हैं। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के नाते बोले, ईश्वर के लिए बोले, ईश्वर से जुड़कर बोले। महापुरुषों ने उपदेश दिए हैं, अगर वो चुप हो जाए तो संसार तो तबाह हो जाए। वो बोले लेकिन वो उपदेशक बनकर नहीं बोलते। वे कैसे बोलते वहां पहुंचो तो पता चलेगा। उनके वचन सुनकर रट कर कोई अपनी उपदेशक की वासना पूरी करता है, वो भटक जाता है। और भटकान इतनी गहरी हो जाती है कि उसको फिर कोई उपदेश की असर भी नहीं होती, खुद उपदेशक है। ऐसे ही जो वाहवाही का शिकार बन जाता है उसको सही बात असर नहीं करेगी। दुख हमारी वासना की पैदाश है, दुख हमारी नासमझी की पैदाश है। जब भी दुख होता है दुख के समय, तो समझ लो कि अभी हमारी नासमझी मौजूद है, अभी ईश्वर से दूरी मौजूद है। अपमान के शब्दों से दुख होता है तो आप हाड़ मांस के शरीर में बैठे हो, ईश्वर में नहीं बैठे हो। आपका हितेशी, आपका गुरु कुछ आपको कहता है और आपको दुख होता है या फरियाद होती है हृदय में, तो समझो कि आप देह में बैठे हो, चमचे चमचियों की वाहवाही में बैठे हो, ईश्वर में नहीं बैठ पाए अभी। ईश्वर में जब मन ठीक से बैठेगा तो आपको ठीक सूझबूझ होगी। सारे दुख, सारी परेशानियां ईश्वर से विमुख होने का ही फल है। जितने भी अनर्थ है परमात्मा से विमुख होने के कारण ही हुए, और ये अनर्थ तब तक जारी रहेंगे जब तक हम उससे अपना मन नहीं मिलाते, उसकी हां में अपनी हां, उसके सत्व में अपना सत्व, उसके होने में अपना होना जब तक हम नहीं जानते, तब तक बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हो जाए, अंत में आदमी खाली का खाली रह जाता है, रेते का रेता रह जाता है। आपके और हमारे पास लौकिक चीजें क्या है? जिनके पास चक्रवर्ती साम्राज्य थे वे भी अंत में रेते रह गए, खाली के खाली रह गए, कुछ नहीं रह गए। और फिर जन्मे फिर मरे। इंद्र के मन में आया मैं कितना भाग्यशाली, 33 करोड़ देवताओं का स्वामी पद मुझे मिला है। गुरु बृहस्पति से पूछने गया, बृहस्पति कतार करके चलने वाले कीड़े मकोड़ों को देखकर आश्चर्य कर रहे थे, वाह भाई, दो बार चार बार तीन बार वाह। इंद्र खड़ा खड़ा देख ही रहा था, आखिर इंद्र थक कर बोला कि गुरुजी क्या है, दो बार पांच बार सात बार तीन बार, वाह भाई इन कीड़ों मकोड़ों को देखकर आप आश्चर्य से बोल रहे हैं, क्या बात है गुरुदेव, मैं तो पूछने आया हूं गुरुजी कि मेरा ऐसा कौन सा शुभ कर्म, मेरा ऐसा क्या भाग्य, मैंने क्या कितना ऊंची पदवी पाई, 33 करोड़ देवताओं का स्वामी होने की मैंने ऐसी ऊंची पदवी पाई। मैं इंद्र बना हूं इसका मैं पूछने आया था, लेकिन पहले मुझे ये पूछना है कि इन कीड़ों मकोड़ों को देखकर आप दंग रह गए, दो बार पांच बार तीन बार सात बार, वाह भाई। बोले ये जो कीड़े हैं इनको अनादि काल से सृष्टि में चले आ रहे, जब से पर ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि की तरफ, और अपने कर्मों की ऊंचाई से कोई दो बार इंद्र बना है तो कोई चार बार बना है, भोग भोगे फिर पतन हुआ फिर गिरे फिर बने, ऐसे कोई दो बार कोई चार बार कोई सात बार पहुंचा है, फिर यह हाल है। इसलिए मुझे लगता है कि वाह भाई सात बार पहुंच कर भी ईश्वर में पहुंचे बिना तुम्हारी यह दशा, वाह भाई। इंद्र कहता है गुरु जी मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया गुरु जी, ईश्वर को पाए बिना, ईश्वर में विश्रांति पाए बिना इंद्र भी बन गए तभी भी आखिर क्या। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक पर्यंत के जो भी भोग है जो भी पद है वहां से फिर आदमी गिरता है, लेकिन मुझ आत्मा को ब्रह्म को कृष्ण तत्व को जो पा लेता है फिर उसका पतन नहीं होता है। कितना भी ऊंचे पद पे पहुंच गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, उपदेशक बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन ईश्वर के साथ एकत्व जब तक नहीं हुआ तब तक गिरना बिल्कुल पक्का है। उत्थान पतन पतन उत्थान ये तब तक चालू रहेगा जब तक अपने परमात्मा पद को ठीक से नहीं पाया। जो अल्पमति के हैं छोटी बुद्धि के हैं उनको छोटी छोटी बातों में सुख दुख हो जाता है, छोटी छोटी बातों में भूल जाते हैं, छोटी छोटी बात में सुकड़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन जिसने ईश्वर के साथ एकत्व कर लिया ऐसे ब्रह्मवेता संत को 1942 के दूसरे विश्व युद्ध में शक में फौजियों ने बॉर्डर पर पकड़ लिया। उस संत ने कह रखा था कि जब सब तू ही है तो अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो आखिरी समय बोलेंगे। सैनिकों ने कहा बोल क्या है, संत देख रहे हैं कि आखिरी समय नहीं हुआ, मेरा क्या हुआ संकल्प, तू किसी बड़े राज्य से जुड़ा है, तू जासूस है, तू कौन है, तू बोल। संत नहीं बोले, चेहरे पर शिकन भी नहीं पड़ती, क्या बात है, आखिर नहीं बोलता है तो तुझे सदा के लिए बेबोला कर देंगे। संत निश्चिंत है, गालियां बकने वाले बक रहे हैं, संत निश्चिंत अपने स्वरूप में टिके हैं, अड़ गए अपने स्वरूप। आखिर मूर्ख सेनापति ने आदेश दिया कि इनके कंठ कूप पे भाला भौंको, नहीं कैसे बोलता, भाला भौंक दिया कंठ कूप पे, रक्त की धार बही, आखिरी श्वास थे। उस महापुरुष ने कहा तू भाला होकर आएगा, भाला भौंकने वाला होकर आएगा, लेकिन तू मुझे, मैं तुझे पहचान गया, उसमें भी तू ही है, सब तू ही तू है, तो क्या है, क्या फर्क है। कितना ईश्वर के साथ एकत्व है। ऐसे महापुरुष मच्छर से तो डरते और शेरों से लड़ते हैं, मूर्खों से सीखते और विद्वानों को सिखाते हैं। देने को अपने पास कोई सामग्री नहीं, लेकिन लेने वाले को सब कुछ दे डालते हैं। मांगने को तो रोटी का टुकड़ा भी मांग लेंगे और देने को पूरा राज्य दे डालेंगे। तस्य तुलना की न जायते, साकार शरीर में वो महापुरुष हैं, लोग पहचानते नहीं। कृष्ण के पुत्र कृष्ण को नहीं पहचानते थे, कृष्ण के खिलाफ चलते थे। राम के राज्य में कुछ ऐसे नंग थे जो राम के खिलाफ बकते थे, लेकिन वे महापुरुष लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हृदयों को, जो अपना हृदयेश्वर का सुख देना चाहते हैं, कोई 2% लेता है, कोई 1%, कोई 0.5%, कोई 4%, 5%, 25% लिया तो ओहो बहुत हो गया। कोई कोई विरले होते हैं जो महापुरुष को 100% उनकी कृपा को झेल पाते, ले पाते। जब तक उस महापुरुषों के साथ अपना दिल श्रद्धा से तत्परता से नहीं जुड़ता, तब तक उन महापुरुषों का पूरा अनुभव हमारा अनुभव नहीं बन पाता है। फिर साकार महापुरुष मिले अथवा तो साकार नहीं तो फिर भगवान को मानकर, भगवान भी महापुरुषों के महापुरुष है, पूरा दिल भगवान में अथवा भगवान को पाए हुए सतगुरु में नहीं मिलता, तब तक पूरे का अनुभव नहीं होता। नानक जी ने बहुत सुंदर बात कही, पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहां का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान, पूरे परमात्मा की आराधना करो। ये खंड खंड एक एक सिद्धियां एक एक वस्तु पाई तो अंत में क्या है, पाने वाले को तो पाओ, जो पाना चाहता है उसको तो खोजो। खोजत खोजत कबीर हो गए हिराई, खोजते खोजते कबीर खो गया, नमक की पुतली दरिया को खोजते खोजते खो गई तो दरिया हो गई। ऐसे जीव ईश्वर को खोजते खोजते ईश्वरमय हो जाए, ब्रह्म परमात्मा को खोजते खोजते ब्रह्ममय हो जाता है। जो मुखिया बनता है, उपदेशक बनता है, उसको वाहवाही का जो चस्का लगता है उससे वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। वाहवाही का खूब ख्याल रखता है और परमात्मा से विमुख हुआ तो आज नहीं तो कल उसको रोना ही पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा। जैसे मरुभूमि के पानी से प्यास नहीं बुझ सकती, ऐसे संसारी उपलब्धियों से जीव के दुख नहीं मिट सकते, बदल सकते, थोड़े दब सकते, जैसे अंग्रेजी दवाइयों से रोग दब जाते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं रोग दबा देती, ऐसे दुख दब जाएंगे लेकिन दुखों का अंत नहीं होगा। तुलसीदास ने बहुत सुंदर बात कही, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, उस आत्म पद को पाए बिना जीवात्मा का दुख नहीं मिटेगा, सब कुछ न कुछ प्रॉब्लम और दुख बना रहेगा। और बड़े में बड़ा दुख है मृत्यु आकर गला दबोच ले, सब कुछ छोड़कर चले गए। फिर किस चंद्रमा के किरणों के द्वारा, वायु के और जल के बिंदुओं के द्वारा आकर अन्न में औषध में टिके और फिर प्राणियों ने खाया, नर ने खाया और नारी के गर्भ में घुसे, फिर वो नारी चार पैर वाली हो, मादा दस पैर वाली हो, छह पैर वाली हो, दो पैर वाली हो, बिना पैर की हो, सर्पिणी आदि हो, उसके शरीर में गए और फिर दुर्भाग्य चालू। सर्पिणी के बच्चे बने तो कहां सुख हुआ, और गधे के पेट में आए तो भी कहां सुख। अरे मनुष्य ऊंचे में ऊंचा शरीर, वहां भी पूरा सुख नहीं है। पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जा का नाम। उस पूरे को आराधना है, इसलिए पूरी समझ चाहिए, पूरी तत्परता चाहिए। छोटी छोटी चलो ये प्रॉब्लम है, अभी मैं कुंवारा हूं, शादी हो जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, तो शादी वालों के प्रॉब्लम सोल्व हो गए क्या? अभी हमारी शादी है, बच्चा नहीं आया है, भगवान बच्चा मिल जाए, बच्चा मिल जाने से दुख मिट गया, तो बच्चे वाले निर्दुख होने चाहिए। धन नहीं है, धन मिल जाए तो दुख मिट जाए, तो धनवानों के दुख मिट गए। सत्ता नहीं, सत्ता मिल जाए तो सत्ता वाले दुख रहित हो गए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी मिलने वाले के दुख चले गए सब। फलाना दुश्मन हैरान करता है, मेरी निंदा करता है, इसके इसको ऐसा वैसा करके घसीट के फेंक दे, घसीट के उसको फेंक दिया, आप निर्दुख हो गए। घड़ी भर के लिए लगेगा, लेकिन वो कर्म आपका फिर गला दबोगे। अगर कपट से, राग द्वेष से किसी उसको घसीट के हटा दिया तो वो कर्म तुम्हारे बनेंगे जो तुमको बहुत दुख देंगे, बहुत कष्ट भुगाएंगे जो कपट करते हैं। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायण वासदास की लगी किनारे नाव। तो सत्य स्वरूप परमात्मा है तो आप सत्य का आश्रय लो। सुख स्वरूप परमात्मा है, आप परमात्मा का आश्रय लेंगे सुखी होंगे। ज्ञान स्वरूप ईश्वर है, उसका आश्रय लेंगे आपकी बुद्धि में नित्य नवीन ज्ञान आएगा, नहीं तो आपको किताबों से सूचनाएं भी एकत्रित करनी पड़ेगी, उपदेशकों की अटकलें आपको रटनी पड़ेगी। और जो उपदेशक संतत्व को पाए हैं वो बोलेंगे सहज में, और उनकी वाणी रटकर आप बोलोगे तो डुप्लीकेट लगेगी। इसलिए हर तरीके से फायदा है कि आप ईमानदारी से ईश्वर के लिए ही काम करें, ईश्वर को पाने के लिए ही सेवा करें। सत्य स्वरूप ईश्वर में आप भी टिको और दूसरों को भी ईश्वर में टिकाने के लिए सत्संग करो तो अच्छा है, सुंदर भला है, मधुर है। मजा लेने के लिए मत खाओ, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खाओ। और स्वास्थ्य के लिए इसलिए खाएं कि स्वास्थ्य का उपयोग करें सौ में स्थित होने के लिए। आप भले खाइए, भले पहनिए, लेकिन जो भी काम करते हो ईश्वर के रास्ते जाने में अगर सहयोग देता है तो वो पुण्य कर्म है, और जो आपको ईश्वर से विमुख करता है वो पाप कर्म है। बिल्कुल सीधी बात है, पाप और पुण्य की व्याख्या इसी से चली। पुण्य किसको कहते हैं? ईश्वर के रास्ते चलने में जो मदद देता है काम, वो सब पुण्य कर्म है। और ईश्वर के रास्ते से विमुख करता है जो कर्म, वो सब के सब कर्म पाप कर्म है। जैसे शराब पीना पाप है, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, मन खराब होगा, इसलिए पाप है। क्योंकि मन बुद्धि खराब होंगे तो ईश्वर के रास्ते कैसे चलोगे? चरणामृत लेना पुण्य है, क्योंकि मन में शुद्ध भाव होगा, तुलसी का दल है, शरीर में मदद मिलेगी स्वास्थ्य में। ऐसे सत्पुरुषों का सानिध्य दर्शन पुण्य कर्म है, क्योंकि उनके संस्कार मिलेंगे, विचार मिलेंगे, भाव शुद्ध होंगे। लेकिन उनकी निंदा करना पाप कर्म है। क्यों? शास्त्र संत के विरुद्ध जब बुद्धि बनेगी तो राग और द्वेष बढ़ेंगे। समझ लेना चाहिए कि कब पतन हो रहा है, कब उत्थान हो रहा है। जब गुरु और शास्त्र, शास्त्र या गुरु बोलते हैं तो शास्त्र कैसे बोलेंगे चुपचाप? तो शास्त्र क्या बोलेंगे? शास्त्र जब बोलेंगे तो गुरु के द्वारा ही बोलेंगे। शास्त्र और सत्य को समझे हुए ब्रह्मवेता जब बोलते हैं, ब्रह्मवेता बोलते हैं वही शास्त्र, जो शास्त्र है वो ब्रह्मवेताओं की वाणी है, सत्य शास्त्र आम किताबों की बात नहीं है, लेकिन ब्रह्मवेताओं सत्य को छूकर जो आए वो सत्य शास्त्र बने। तो जब गुरु की बात समझने में सुनने में खटक लगती तो समझो भविष्य में पतन है, गिरावट है, अगर ऊंधा अर्थ लेते हैं तो। अगर सही अर्थ लेते हैं तो उन्नति है। बुद्ध के पास उनका भिक्षुक आया कि भंते आज्ञा दीजिए कि मैं आपके उपदेशों का प्रचार प्रसार करूं। उन्होंने कहा कि निंदकों ने इतना माया जाल फैलाया है कि संघ का नाम सुनते ही मेरा शिष्य है ऐसा लोग सुनते तो उससे झगड़ते लोग। बुद्ध के लिए इतनी लोगों ने, निंदकों ने नफरत फैलाई है कि कोई कह दे कि मैं बुद्ध का भिक्षुक हूं या, तो लोग उनका विरोध करते हैं, तुम कैसे उपदेश करोगे। मानो तुम उपदेश करने लग गए और दूर इलाके में गए, 100-200 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने तुम्हारा विरोध किया और तुम्हारे को पत्थर मारा, सिर फोड़ दिया, तो क्या करोगे। बोले भंते मैं धन्यवाद दूंगा कि खाली थोड़ा सा पत्थर ही मारा है, रक्त पहुंच लूंगा, इलाज कर लूंगा, लेकिन उतनी देर तो गुरुजी का प्रसाद तो लोगों तक पहुंचेगा। बोले मानो तेरा एक इंद्री को ही नष्ट कर दे, आंख फोड़ दे, सिर से कीमती आंख है, आंख फोड़ दे, उंगली तोड़ दे, तो क्या सोचोगे। बोले तो 10 इंद्रियों में से एक ही इंद्री डैमेज हुई, बाकी 9 इंद्रियां तो रही। बोले मानो लोग तेरे को 9 इंद्रियां क्या 10-10 इंद्रियां तेरी समाप्त कर दे और तेरे को मार डाले तो। बोले तभी भी सत्य के नाते उपदेश करते करते मर जाऊंगा, तभी भी भंते मुझे आनंद। भंते ने कहा पुत्र तेरा कल्याण हो, तू वाहवाही के लिए उपदेशक नहीं बन रहा है। ऐसा आदमी जो भी व्यवहार करेगा सच्चाई से करेगा, ईमानदारी से करेगा, और कपटी आदमी जो व्यवहार करेंगे, बेईमान आदमी, वो अपनी चमचों की फेवर करेंगे। और यही कारण है कि झगड़े बढ़ते जाएंगे, कलह बढ़ता जाएगा, और इतना भोगी को यश भोग का पद मिलेगा तभी भी वो दुखी रहेगा, रोता रहेगा। अगर ईश्वर के नाते करे तो कोई दुख टिक ही नहीं सकता। महापुरुषों के जीवन में कितना विघ्न बाधा होता है तभी भी उनके हृदय में दुख टिकता ही नहीं। ऐसा थोड़ी कि अज्ञानी के इर्द गिर्द विघ्न बाधा होते और महापुरुष के इर्द गिर्द विघ्न बाधा नहीं आते। आते हैं लेकिन टिकते नहीं, असर नहीं कर सकते उनको। कभी कभार कोई क्या तरतीव्र प्रारब्ध के बड़े विघ्न बाधा ने तो बहते पानी में लकीर जैसा। तो सारे सारों का सार है कि ईमानदारी से ईश्वर में प्रीति रख। भागवत के महात्म में आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा कंजूस था। कंजूस उसे नहीं कहते जो कर कसर से जीता है, कंजूस उसे कहते हैं कि खर्च करने की जगह पर खर्च न करे और अनुचित ढंग से संग्रह ही संग्रह करे, उसे कंजूस कहते हैं। क्या गांधी जी को आप कंजूस कह सकते हैं? एक दातुन नीम का तोड़ के आए सरदार वल्लभ पटेल, दूसरे दिन दातुन तोड़ने जा रहे थे, बोले मत तोड़ो मेरे पास कल वाला पड़ा है।
तीसरे दिन तोड़ने गए, बोले मत तोड़ो, मेरे पास परसों वाला पड़ा है, मैं रोज दातुन करता हूँ, जितना काम में आता उतना टुकड़ा काट के फेंक देता हूँ, बाकी का काम में लेता हूँ। नीम के दातुन से बहुत सारे फायदे भी है, और सुबह सुबह नीम का दातुन चबा चबा के करे और थोड़ा सा उसका ही रस ले ले तो बहुत सारी पेट की खराबियां और बार बार बुखार आना है और बीमारियों का शिकार बनना उससे आदमी बच जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू यात्रा करते करते रांची पहुंचे, उनके पैरों में पीड़ा होने लगी। पीड़ा का कारण था कि चप्पल घिस गई। वो अहिंसक चप्पल पहनते थे, क्योंकि हत्या जो स्लाटर हाउसों में आजकल होती है ऐसे चमड़े की चप्पल नहीं पहनते। जूते मिलते थे 10 किलोमीटर दूर, सेक्रेटरी लाया जूता, चप्पल लाया। राजेंद्र बाबू ने पहनी, बढ़िया है, कितने की लाए? 19 रुपए की। अगले साल 11 रुपए, इस साल 19 क्यों? बोले 11 वाली भी है लेकिन इसका जरा बाहर का थोड़ा शो है, टिप टाप है। बोले नहीं नहीं, वापस कर दो मुझे, 11 वाली चप्पल से चल जाता है तो 19 रुपए क्यों खर्चूंगा? ये 8 रुपए देशवासियों के आंसू पहुंचने में, उनकी सेवा में, गरीबों की सेवा में लग जाएंगे तो अच्छा होगा। चप्पल वापस देने गया राष्ट्रपति का सेक्रेटरी। राष्ट्रपति चिल्लाते हैं, ठहर ठहर, तू जाएगा आएगा, कार का पेट्रोल जलेगा। उस समय 15 आने में लीटर मिलता था, 14 आने 15 आने का लीटर, मतलब 90 पैसे का लीटर, 90-92 पैसे लीटर तो हमने भी खरीदा और मोटरसाइकिल भगाई थी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, प्रैक्टिकल है। 1 रुपया 1 पैसा देते थे, 1 चंबू ऑयल और 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में थोड़ 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 भगाते थे। किसी को बोलना मत, हाँ ये प्राइवेट बात मैंने तुमको बता दी जयराम जी की। तू जाएगा आएगा, पेट्रोल खर्च होगा। खैर, मेरा भाषण सुनने को जो लोग आए उनको ये चप्पल पकड़ा देना, कल उसी गांव के लोग बहुत सारे आते हैं, बदला के लिए आएंगे। क्या राजेंद्र बाबू को आप कंजूस कहोगे? हम उस बात पर राजी नहीं होंगे। कर कसर करना ये महानता की निशानी है, कर कसर करना ये बुद्धिमानी की और महानता की निशानी है। जो कण का और क्षण का कर कसर नहीं करता है वो फिर महान चीज को कैसे पा सकता है? गांधी जी बहुत सारे खतों का उत्तर लिखते, खत पढ़ते जाते और चिट्ठियों में जो खाली कोरा कागज होता वो कैंची से काट के रखते जाते। सुशीला नायडू ने पूछा कि बापू जी टुकड़े टुकड़े क्यों काट रहे हैं? बोले इन्हीं टुकड़ों पर उनको उत्तर दे दूंगा तो कागज का पैसा बच जाएगा, कागज का खर्च बच जाएगा। घनश्याम बिरला के पुत्र दिवाली की रात को उसके ससुरे आए थे, मंगनी हुई, एक दिया सलाई, दूसरी दिया सलाई, तीसरी दिया सलाई हवा में बुझ गई, चौथी जलाकर दिया सलाई और मोमबत्ती जलाने जा रहे थे। पिता ने, घनश्याम बिरला ने जोर से तप पर जमा दी। संबंधी पूछता है कि अपने मंगनी की हुए बेटे को क्यों थप्पड़ मारते हुए कहा? बोले तीन तीन कांडी भू रो सत्यानाश की दोबर, तीन तीन कांडी, तीन तीन दिया सलाई का सत्यानाश कर दिया। बोले थाने काई टूटो है, हजार हजार करोड़ तो व्हाइट मनी बोलता है ऑन पेपर, तो 2 नंबर का कितना होगा? व्यापारी लोग जरा अनुमान लगाओ, तो तुम्हारे को हजारों करोड़ है, फिर एक दो तीन दिया सलाई जला दी या बिगाड़ दी तो क्या टूटा पड़ता है? बोले जो तीन दिया सलाई नहीं संभाल सकता है वो मेरी ये मिलकत कैसे संभालेगा। गुजरात में कहावत है कि छास मां माखण जाए अने वह फूवड़ कहवाए, एक तो बगाड़ थाए अने वह फूवड़ कहवाए, तो बिगाड़ करना ये कोई उदारता के लक्षण नहीं है। कर कसर कोड़ी की कर दे और दान करना है तो लाखों का कर दे, व्यर्थ न जाए, बिगड़े नहीं। तो आत्मदेव कर कसर वाला बुद्धिमान नहीं था लेकिन कंजूस काकड़ी था। लोगों ने कहा कि तुम कंजूस हो इसलिए भगवान ने भी तुमको संतान देने में कंजूसी बरती है। मनोवैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि जो अति कंजूस होता है उसको कब्जात की बीमारी होनी ही चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक बात मेरे काम में आ गई। मेरे आश्रम में एक महंत रहता था, मैंने उनको मानता ही दी उस इलाके उस जगह। तो उसने मेरे को कहा कि बापूजी मेरे को कब्जा, तो मैंने उसको जो भी प्राकृतिक इलाज में जानता था एक से एक उस पर प्रयोग किया, लेकिन मैं विफल हुआ। उसने कहा बापूजी कोई इलाज मेरे पर काम नहीं करता है। वो था धनाढ्य व्यक्ति, घर में था तो फिर साधु बना, बड़ा कर कंजूस। कभी उसने भंडारा नहीं किया महंत बनने का भी, जयराम जी की न मैंने करवाया। मैंने उसको कहा कि देखो अब तुम ऐसा करो कि आश्रम के पास में जो गांव है आधे एक किलोमीटर दूर, वहां के गरीब बच्चों को थोड़े से फल बांटो ताकि तुम्हारी मुट्ठी खुल जाए। जब मुट्ठी खुल जाएगी तो अंदर अचेतन मन भी अपनी मुट्ठी खोल देगा। जिसका मन बहुत बहुत कंजूस होता है उसका अचेतन मन सुबह का मसाला भी कंजूसी करके पकड़ रखता है, थोड़ा कम ही छोड़ता है। मनोवैज्ञानिक का ये कहना था। मेरे को आइडिया आ गई, मैंने उस महंत चंदीराम को कहा कि तुम आश्रम में तो कभी चाहिए नहीं और आश्रम ने कभी चंदा मांगा नहीं और कभी किसी सेठ की खुशामत की नहीं, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। ऐसा करके जंगलों में हमने उसकी कृपा का अनुभव किया, आज तक ये चंदा चोरी के चक्कर में हम नहीं पड़े, तो तुम्हारे से क्या मांगेंगे तुम जैसे कंजूस से। हम तो नहीं मांगते लेकिन तुम्हारे को कब्जियात की बीमारी मिटानी है तो गांव में बच्चों को फल बांटा करो। बोले कितना खर्चा होगा, जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैंने कहा जो हो। फिर उस कंजूस ने क्या किया कि आश्रम में कई सेठ लोग आते हैं तो होलसेल फ्रूट मर्चेंट को पकड़ा और होलसेल में फ्रूट मंगाया, फिर वहीं पकाता था और जब केले या चीकू एकदम पक जाते और निकालने जैसे होते वो भर के थैली में और बच्चों को देना शुरू किया। देता तो हाथ तो खुले, हाथ खुले थोड़े दिन में मेरे को बोला कि बापूजी आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हो गया हूँ। अभी भी वो जिंदे हैं महंत चंदीराम। तो कभी कभार मनोवैज्ञानिकों की बात भी महाराज प्रैक्टिकल प्रयोग करते तो सच्चाई के दर्शन करा देती। लेकिन इस बात पर मैं राजी नहीं हूं कि जिसको भी कब्जियात है वो कंजूस ही होगा, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन कंजूसी के कारण कब्जियात हो भी सकती है, इस बात पे से भी मैं इनकार नहीं करता हूं। तो जिनको ये तकलीफ है वो समझ जाना, जय राम जी बोलना। नारायण हरि नारायण। लोगों ने बताया, जय जय श्याम महाराज, लोगों ने बताया कि तुम अति कंजूस हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे घर में संतति नहीं थी और तुम्हारे घर में जो वृक्ष है वो भी फलता नहीं और तुम्हारी गौ भी फलती नहीं और तुम्हारी पत्नी भी फलती नहीं, तुम दान पुण्य करो। उन्होंने आधी संपत्ति दान पुण्य में लगाई लेकिन न हुआ बेटा न हुई बेटी। आत्मदेव ब्राह्मण खिन्न हुए, घर में तो पत्नी की चलती थी, जरा बड़े घर की थी, अकल में जरा पति से थोड़ी तगड़ी थी, इसलिए रुबाब से चलता था उसका आज्ञा आर्डर। आत्मदेव ब्राह्मण उसके महणों से भी दुखी हुआ और परिस्थितियों के कारण भी दुखी हुआ। एक दिन घर से चल पड़े और जंगल में जा बैठे सरोवर के किनारे, कुछ भी हो किसी साधु बाबा से आशीर्वाद लूंगा तभी जाऊंगा। एक संत आए और संत ने सरोवर से जल लिया, तनिक आराम किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि महाराज मैं जब स्नान करके तर्पण आदि करता हूँ पितरों के निमित्त, तो मेरे हाथ की अंजलि भी मानो पितरों के दुखद आंसुओं से गर्म सी हो गई, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मेरी पत्नी भी बांझ, मेरा वृक्ष भी बांझ और मेरी गाय भी बांझ। महाराज मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे घर में संतति हो। अपना दुखड़ा सुनाया मैंने, दान पुण्य वो किया लेकिन कुछ हुआ। महाराज ने कहा कि छोड़ो, जब भगवान की जो मर्जी होगी पुत्र होने से क्या होता है, तुम अपना भजन करो, मन भगवान में लगाओ। पुत्र होने से अगर मुक्ति होती तो पुत्र वाले सब मुक्त हो जाते, सब सुखी हो जाते। सगर राजा और अमुक अमुक राजाओं ने तो पुत्र के कारण ही दुख भोगे हैं, इसलिए पुत्र की ममता छोड़कर भगवान से ममता रखिए, चित्त में समता प्रभु से ममता रखिए, इसी में कल्याण है। बोले महाराज मैं कथा सुनने को नहीं आया, जय सियाराम। महाराज मुझे विवेक नहीं चाहिए, मुझे बैराग नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए बेटा। अगर आप दे तो हो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। महाराज ने देखा कि ये मुजरिम जरा ज्यादा बीमार है, इसका तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। चलो समय अपने आप दिखाएगा, भगवान का स्मरण करते महाराज ने बल उसको फल पकड़ा दिया, ऐसी कथा भागवत में आती। फल लाए धुंधुकारी के पास। अब मानव का मन देखो कैसा है, फरियाद बना लेता है। धुंधुली ने फल लिया, सारी हकीकत जानी, वो अपनी बहन के आगे दुखड़ा रोने लगी। ब्राह्मण तो गए परदेश, लेकिन वो ब्राह्मणी सोचने लगी फल खाऊंगी गर्भ रह गया, अगर जल्दी से समय सर नहीं आया तो मेरे क्या हाल होंगे, अगर टेढ़ा ही हो गया तो क्या हाल होंगे, और सचमुच में टाइम सर भी आ गया तो प्रसूति की पीड़ा तो बहुत बड़ी भारी है, और प्रसूति की पीड़ा में तो मुझे कई दिन आराम करने को कहेगी दाई तो घर का काम कौन करेगा, मेरी ननद को बुलाना पड़ेगा और वो है गरीब, और भाई बहन की आपस में बनती भी खूब है तो वो घर का बढ़िया बढ़िया घी उठा के चली जाएगी, शक्कर उठा के चली जाएगी, बढ़िया बढ़िया घर का सामान लेके चली जाएगी, तो मैं कैसे रोकूंगी उसको। भाभियां बड़ी कड़ी नजर रखती है शादीशुदी ननद पर, जयराम जी बोलना पड़ेगा, हमें तो क्या है कोई बात नहीं है, कन्या है दो दो करेगी, मैं क्या देखूं, दे दो, लेकिन टेढ़ी आंख से सब देख लेगी, भाभी कोई गम नहीं होती है। जय सियाराम नारायण हरि, माया बोलना पड़ेगा तुमको नारायण हरि नारायण। बोले बाबा जी तुमको ये कैसे पता, कि हम छोटे बच्चे थे ना तो सारा ऑडिट करते थे, माया समझती ये बच्चा है अकल का कच्चा, लेकिन हम छोटे थे तब भी सारा ये खेल देखा करते थे। जयराम जी के। अब उसकी बहन कहती है कि देख तेरा पति तो परदेश गया, तू गर्भिणी होने का पड़ोस में नाटक कर ले, मेरे पेट में बालक है 2-3 महीने हो गए, वो तुम्हारा पति आएगा उसके पहले ही पहले शायद हो जाए, मेरे को बचाए, मैं तेरी गोद में रख दूंगा, मैं अपना बालक तेरी गोद में रख दूंगी और तू ये शो कर देना कि मेरे को बालक हुआ है। बात रही मेरे पति को पटाने की तो उसको थोड़ा धन दे देना। माया भी कांटेक्ट करना जानती है जयराम जी की, कभी कभार पति को बोलती कि 5,000 लल्लू की माँ से लाई हूँ 2% ब्याज पे, होता खुद का है लेकिन लल्लू की माँ के नाम से दे देती है और ब्याज रोकड़ा करती रहती है। हाँ जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब समय हो गया, ऐसा मान लेते हैं, धुंधुली के गोद में उसकी बहन ने अपना बालक रख दिया। इतने में आत्मदेव ब्राह्मण आए, बड़े खुश हुए कि क्या विधाता की कृपा है। ब्राह्मणी ने वो फल तो गाय को खिला दिया था, गाय गर्भवती हो गई, महापुरुष का दृढ़ संकल्प, अब तो वृक्ष भी फलित हो रहा है, गाय भी फलित हो रही है और तुझे भी भगवान ने फल दिया, वाह वाह, देने वाला देता है तो चाहूं और से देता है। धुंधुली बच्चा गोद में लिए हुए लाड कर रही थी। बहुत दिन के बाद आया, मेरे शरीर से भरण पोषण हुआ और नाम तुम्हारा क्यों रखूंगी, नहीं रखूंगी ना, मेरे नाम से तेरा नाम रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली तो तेरा नाम धुंधुकाली, तेरा नाम धुंधुकाली धुंधुकाली धुंधुकाली। अब बुनियाद में ही बेईमानी शुरू हो गई, जयराम जी बोलना पड़े, मेरा नाम धुंधुली तेरा नाम धुंधुकाली धुंधुकाली। अब वो धुंधुकाली दिन दूना रात चौना बड़ा होता गया, थोड़े ही दिनों में तो गाय के गर्भ से बालक हुआ, उसका नाम गोकर्ण रखा गया क्योंकि उसके गाय जैसे कान थे। गोकर्ण धर्मात्मा सज्जन था और धुंधुकारी दुष्ट निकला। जो जो बड़ा होता गया उपद्रव उसके बढ़ते गए, पड़ोस के बच्चों को पकड़कर कहीं बावड़ी में धक्का मार दे, कुओं में डाल दे, बाप सोया है तो उसके कान में सलाई भोंक दे। चार प्रकार के पुत्र होते हैं, अगले जन्म का वैरी होता है वो अपना बदला लेने को बेटा होकर आता है, कोई अगले जन्म का लहनेदार होता है अपना ले लाके शादी शुदी करके माल हड़प करके रवाना हो जाता है, कोई अगले जन्म का सेवक होता है तो साथ में रहता है सेवा करता है, और कोई उदासीन होता है तो न तंग करता है न कुछ सेवा करता है, ऐसे चार प्रकार के प्राणी पुत्र के रूप में आते हैं, वैरी लहनेदार सेवक और उदासी। अब किसका पुत्र कैसा है दिल पे हाथ रख के समझ लेना और भगवान को कहना कि भाई तो ये कर जा चुके। जयराम जी बोलना पड़ेगा। किसी का लहनेदार पुत्र देखकर अपने सेवक पुत्र का अभिमान मत करना कि मेरा बेटा देखो सेवा करता है। अरे वो अगले जन्म का कोई तुमने सेवा की होगी सेवा का। किसी का सेवक पुत्र देखकर अपना वेरी या लहनेदार बेटे को देखकर छाती मत कूटना। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। जैसे सरजू महारानी में और धूल भी बहती जाती है और फूल भी बहते जाते हैं, ऐसे समय की धारा में सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता बहती चली जा रही है। तू कब तक रोएगा, कब तक दुख मनाएगा, कब तक अपने भाग्य को कूटेगा। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। न हमारी आरजू है न जस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। अपना पुरुषार्थ करो, उद्योग करो, प्रयत्न करो, लेकिन परिणाम में संतुष्ट रहने की कला सीख लो। आदमी आते भी रोता है, जाते भी रोता है। जब रोने का वक्त नहीं होता तब भी अज्ञान दशा के कारण कम वक्त रोता ही रहता है, फरियाद करता रहता है। तू फरियाद मत कर, तू धन्यवाद दे कि पुत्र ऐसा है इसलिए भगवान तेरे चरणों में आने का अवसर मिला है। पत्नी अगर गड़बड़ करती है तो धन्यवाद दे तुकाराम महाराज की, नहीं कि भगवान तेरी कृपा है, नहीं तो आसक्ति में फंस जाता। पत्नी अगर ठीक बहुत बढ़िया चल रही तो भगवान तेरी कृपा है, झंझट इसने संभाला है तभी मैं भजन कर पाता हूँ। अगर पत्नी चली गई है तो नरसिंह मेहता की नहीं कह दे कि भगवान तेरी कृपा है, दो चूड़ियां होती तो खटखट होती है, भलू थयू भागी जंजाल, सुखे भजी सु गोपाल। ऐसे पति पत्नी कुटुंबी चला गया तो उसके लिए छाती कूट कर रो मत, उसके लिए श्राद्ध करो, गीता के साथ में अध्याय का महात्म्य पढ़ो, फिर पाठ करो, उसका पुण्य कर्म उनको दो, जप करो, अखंड कीर्तन करो, रामायण भागवत का पाठ रखाओ, कम से कम 10,000 मंत्र गायत्री के अथवा 10-20,000 हरिनाम जप करके उसकी सदगति के लिए प्रार्थना करो। ये तो करो, लेकिन हाय रे हाय मुन्ने की माँ, तू चली गई अब मेरा क्या होगा, उसकी मौत खराब हो रही, तेरा खाना खराब हो रहा है। एक सेठ ने आश्रम में भोजन होता है रात को, कढ़ी खिचड़ी बनती है शाम को, जरा सी कढ़ी की चम्मच मुंह में डाली और आंखों में से पानी। पूछा क्यों भाई कढ़ी अच्छी नहीं लगती, बोले नहीं कढ़ी तो बहुत बहुत बढ़िया वंडरफुल बनी, बहुत अच्छी बनी, तो फिर रोते क्यों। बोले आज से 12 साल पहले मुन्ना की माँ ने ऐसी कढ़ी बनाई थी, उसकी याद आ रही है। अब 12 साल पहले वो गई बिचारी, अभी तो याद करके खाना खराब क्यों कर रहा है भाई। नारायण हरि बोलो ना माया, तुम बोलती नहीं। नारायण हरि नारायण, तो किसी को पत्नी की याद आती, किसी को गए हुए पति की याद आती, पुत्र की याद आती। जब याद आए पुत्र की पति की कुटुंबी की तो कह देना कि तुम्हारा शरीर पंच भौतिक था, वो 5 भूतों में लीन हो गया, लेकिन तुम्हारा जीवात्मा अमर है और वो परमात्मा का सनातन अंश है। मेरे जैसे पिता तुमको बहुत मिले होंगे अथवा मेरे जैसी पत्नियां तुमको बहुत मिली होगी, आपका जो भी संबंध हो मृतक से। मेरे जैसे पुत्र आपको बहुत मिले होंगे और बहुत बार आप किसी के पुत्र हुए होंगे, सचमुच में तो आप ईश्वर के पुत्र हैं। अपने ईश्वर को याद करके आप ईश्वर के शरण में चले जाइए और सदगति प्राप्त कीजिए, और मुझे भी आशीर्वाद कीजिए कि मैं भी संसार को सपना मानकर, अपने चैतन्य सच्चिदानंद परमात्मा को अपना मानकर मैं भी मुक्ति के रास्ते जाऊं, लवरी लवर के चक्कर में ना पड़ूं, दूसरी लाने के चक्कर में ना पड़ूं, 84 के चक्कर से निकलने के रास्ते पर चलूं। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद कीजिए और आप भी आसक्ति छोड़कर परमात्मा के रास्ते जाए। आप धुंधुकारी बड़ा हो गया होगा, उधर ही चलते अपन। धुंधुकारी इतना तूफानी हुआ, इतना उद्दंड हो गया कि आत्मदेव ब्राह्मण के नाक में दम आ गया। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपना हृदय खोलकर गोकर्ण पुत्र के आगे दुखड़ा रोया कि सन्यासी तो मुझे मना कर रहे थे लेकिन मैंने हट ली थी, साधु की बात टाली, योग वशिष्ठ में आता है कि हे राम जी, संत की आज्ञा का उल्लंघन करके, ब्रह्मवेता संत की आज्ञा का उल्लंघन करके ऐसा कौन व्यक्ति जो त्रिभुवन में सुखी रह सके, शांति पा सके। गुरुवाणी कहती है, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर महारा, संत के निंदक की पूज्य न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। मैंने साधु की सेवा तो नहीं पाई, लेकिन मैंने हठ करके जबरन फल लिया, उस फल ने मेरा जीवन विफल कर दिया। इससे तो पत्थर पैदा होता तो अच्छा, अब मैं तो बड़ा दुखी हूँ। बुद्धिमान गोकर्ण ने कहा कि पिता, ये संसार सारा कर्मों का खेल है। बहती नदी में तिनके और लकड़ के टुकड़े कभी कभार साथ होते और फिर धारा में बिखर जाते हैं। ट्रेन में, रेल में कुछ पैसेंजर साथ होते, अपनी अपनी मुसाफरी, अपना अपना स्थान आते बिछड़ जाते। ऐसे ही कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के अनुबंध से लोग मिलते हैं, फिर अपने अपने कर्म के अनुसार बिछड़ जाते। रहीमन कहां लगी रोइए, हसीए कौन विचार, गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। कोई गया तो आने वाला नहीं, कब तक रोएगा, जो है वो भी जाने वाले। रोना और हंसना क्या, ये तो सपना है। अब पुत्र कुपुत्र हुआ है तो आप दुख करके क्या करोगे। हे पिता, आप वैराग्य में ही राग करिए, कुटुंब में राग मत करिए। ये देह क्या है, हड्डी क्या, दो खड़े हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां और कुछ मांस, और वो रगों से बंधा हुआ। ये तो विधाता ने बड़ी कृपा की है कि उसके ऊपर चमड़े का कवर चढ़ा दिया, नहीं तो मक्खियां बिन बिन आती, बड़ी बदबू और दुर्गंध दिखती, क्या बुरा हाल होता। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, अगर काम से बचना हो तो शरीर को मन से, चमड़ी बिना का देखो तो काम विकार से बचने में मदद मिलेगी। स्त्री पुरुष के शरीर को, पुरुष स्त्री के शरीर को मन से ही चमड़ा हटा कर देखे तो क्या भरा है, अथवा बीमार शरीर को देखो तो क्या भरा है। क्रोध से बचना है तो भोजन चबाकर करो, और जब भी क्रोध आए तो हाथों की उंगलियों को गद्दी पर लगाओ, अर्थिंग मिल जाए। और शांत रहने का प्रयास करो, ओम शांति जप करो, क्रोध के विकार से बचोगे। लोभ से बचना है तो आय का पांचवां हिस्सा, नहीं तो दसवां हिस्सा सत्कर्म में लगाओ। अहंकार से बचना हो तो अपने से बड़ों के आगे रहा करो। धन का अहंकार से बचना हो तो बड़े बड़े धनी आज कहाँ है धरती पर, कितने बड़े धनी आए। सौंदर्य के अहंकार से बचना तो बड़ी बड़ी सुंदरिकाएं, जगत विश्व विख्यात सुंदरिया, विश्व सुंदरिया भी चली गई तो तुम्हारा हमारा सौंदर्य कब तक। एक एक विकार से बचना है तो ऐसा प्रयास करो, लेकिन सब विकारों से एक साथ बचना है तो ए तत् सर्वम गुरुर भक्त्या, ये सारे के सारे दोषों से निवृत्त होना हो तो ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं का सानिध्य पाओ तो साथ में ही सारे दोष निवृत्त हो जाएंगे। एतत् सर्वम गुरुर भक्त्या। हे पिताश्री, आप इस शरीर में राग न करें, कुटुंब में राग न करें। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य में ही राग करे, भक्ति निष्ठ बने, इसी से आपका उद्धार होगा। गोकर्ण की सही बात सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण गंगा किनारे चले गए, कुटिया बांध कर रहने लगे, भगवान के नाम का जप करते, श्री भामद भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते और मन श्री हरि में लगाकर अपना जीवन धन्य किए। गोकर्ण यात्रा करने को निकल गए, धुंधुली और धुंधुकारी जो घड़ी भर पहले तो कहे, मेला बेटा लेखा, जो प्रेम परमात्मा को करना चाहिए, जो भरोसा ईश्वर पर रखना चाहिए, वो भरोसा अगर बेटे पे किया तो जरूर दुख देगा, ये प्रकृति का अकाट्य सिद्धांत है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। जो उम्मीदें ईश्वर पर करना चाहिए, वो उम्मीद अगर किसी दोस्त पर की तो वो दोस्त जरूर धोखा देगा। जो आधार ईश्वर का लेना चाहिए वो आधार अगर दो नंबर पैसों का लेंगे तो वो दो नंबर के पैसे भी दुख देते हैं। पैसे चाहे एक नंबर के रखो, दो नंबर के रखो, कहां रखो, इससे मेरा कोई ज्यादा आग्रह नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह यह है कि पैसों का या मित्रों का भरोसा करो, लेकिन ईश्वर से बढ़कर किसी पर ज्यादा भरोसा न करो। ईश्वर के नाते सबसे व्यवहार करो, लेकिन सबके नाते ईश्वर को दाव पर मत लगाओ। जय राम जी की जय। राम जी तो बोलना पड़ेगा। जो आधार परमात्मा पे रखना चाहिए वो आधार अगर बच्चे पर रखा तो सच कहता हूं कि उन्हीं बच्चों ने उन माँ बापों को धोखा दिया। मेरा बेटा बड़ा होगा, शादी करेगा, बहू लाएगा, मैं पानी मांगूंगी तो दूध पिलाएगी बहू रानी, लेकिन दूध पिलाने के साथ साथ कटु वचन का जहर कितना पिलाती है उन सासों से पूछा करो। हाँ जयराम जी बोलना पड़ेगा। मेरा बेटा बड़ा होगा, कमा के खिलाएगा, कमा के खिलाए, उसके पहले धक्के कितना खिलाता है पूछ के देखो उन पिताओं से जिन्होंने बेटों पर भरोसा रखा। बेटों को खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन ये मुझे सुख देंगे इस बुद्धि से किया तो दुख जरूर मिलेगा। ये मेरे सहारा है तो ये बेसहारा जरूर करेगा। मैंने तो कई लोगों के जीवन में झांका और अपने कुटुंबी मित्र स्नेही सगों के जीवन में भी झांका और अपने जीवन में भी झांका कि जिस पर ज्यादा थोड़ा सा भरोसा किया उसके भरोसे का फल मेरे को मिले। उसके पहले मैंने इस बात को याद करके सावधानी बरती, इसलिए मैं बड़ा खुश रहता हूं इन दो वचनों से। जिन जिन पर भरोसा विशेष किया उन लोगों ने जो व्यवहार किया मुझे याद आया कि वाह, तेरा कायदा खाली गृहस्थियों पर नहीं, खाली साधुओं पर नहीं, खाली हिंदुस्तान पर नहीं, सारे विश्व में तेरा एक ही कायदा है। देश देश के अपने कायदे होते हैं, समाज समाज के अपने कायदे होते हैं, लेकिन ईश्वरीय कायदा सारे विश्व में एक ही है। जयराम जी की। प्रकृति का कायदा सब जगह एक जैसा चलता है, चाहे देसी करे चाहे विदेशी करे, चाहे लेडी करे चाहे लेडी का बाप करे, चाहे लेडे का बाप करे, चाहे गुजराती का बाप करे, चाहे गुजराती का बेटा करे, सिंधी का बेटा करे। ये ईश्वरीय नियम का उल्लंघन जिसने किया है उसने थप्पड़ खाई है, खाई है, खाई। जमाई मेरा बड़ा अच्छा है, मेरे को सुख देगा। उन्हीं जमाई ने ससुर की मिलकत हड़प की और अग्नि संस्कार भी ठीक से नहीं करने दिया। ऐसे भी केस है जिन ससुरों ने जमाइयों पे भरोसा किया, मेरी बेटी है बेटा नहीं तो ये जमाई मेरे को सुख देंगे, उन जमाइयों ने धोखा दिया। शब्द तो वहां सरता रहे लेकिन मिलकत के लिए लड़ते रहे। और जिन्होंने कहा कि ये मेरा अमुख शिष्य है, अमुख चेला है, ये संपत्ति मेरा ये करेगा, उस गुरुओं को भी ऐसे चेलों से धोखे खाने पड़े, ऐसा भी इतिहास आपको देखना हो तो मिल सकता है। इसलिए कृपा करके ईश्वर से अधिक मूल्य किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी धन या सत्ता को न दो। अगर देते हो तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जो भरोसा ईश्वर पर करना चाहिए, जो स्नेह ईश्वर पर को करना चाहिए, जो प्रेम ईश्वर को करना चाहिए, वो प्रेम अगर अपने सुख के लिए किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को किया और भरोसा रखा, तो जैसे आप स्टूल पे खड़े होते और जो ही ऊपर उठते हैं तो स्टूल खींच लिया जाता है तो आप धबाक से गिर जाते हैं, ऐसे ही आप अगर और भरोसा करके किसी पर ऊपर उठना चाहते तो तरत स्टूल खींच लिया जाता है। ये एक दो की बात नहीं है, सारी सारी मानव जात के साथ ये कुदरत का अपर कानून काम करता है। जय राम जी की। ठीक कहा है कबीरा, इह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। ईश्वर के नाते बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन बेटी बड़ी होगी और सुख देगी, नाम निकालेगी, हमारा नाम करेगी, नाम करने के लिए जो बेटी को पालती पोसती हो वो बेटी नाक काटे बिना नहीं रहेगी। मेरे को सुख देगा बेटा, इस भावना से बेटे को पाला पोषा तो वो बेटा दुख दिए बिना नहीं रहेगा। और ये मित्र मुझे काम आएगा, मित्र मुझे काम आएगा, खुशामत खोरी करते रहे तो मित्र धोखा दिए बिना नहीं रहेगा। जयराम जी की। उसका मतलब ये भी नहीं कि सारे मित्र धोखा देते या सारी बेटियां बेटा ऐसा होते, नहीं, बेटी बेटा मित्र काम भी आते करते लेकिन उन्हीं लोगों को फायदा देते हैं जो लोकेश्वर का नाता जोड़े रखता है। उनका बेटा तो क्या, हजार बेटा उनकी सेवा करने को हाजिर हो जाते हैं, हजारों मित्र उनके साथ हो जाते हैं जो ईश्वर के साथ अपना नाता बनाए रखता है। मैग्नेट, एक दो किलो का मैग्नेट किसी प्लेट को पकड़े और प्लेट ने बहुत सारे सूक्ष्म लोहे के कण थाम रखे हैं। लोहे के कणों को थामने का सामर्थ्य प्लेट में तब तक है, लोहे के कण तब तक उस प्लेट को चिपके हुए हैं जब तक वो मैग्नेट से जुड़ी है। ऐसे ही तुम्हारी मति परमात्मा रूपी मैग्नेट से जुड़ी है तो लोक रूपी लोहे के कण तुम्हारे से जुड़े रहेंगे और तुम्हारी मति ज्यों उस परमात्मा मैग्नेट से विमुख हुई तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। जयराम जी, बोलना ही पड़ेगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे नास्तिक का बाप हो, जयराम जी बोलना ही पड़ेगा। अब वो माँ को सताने लगा, मेरा बेटा है, मैंने धारण किया, मेरा बेटा, मैं धुंधुली, मेरा बेटा धुंधुकाली। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेल जा भांजे, भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जिनको पाकर बहुत खुश हो रहे हो समझ लेना कि तुम दुख को बुला रहे हो। जयराम जी की, जिन चीजों को, जिन मित्रों को, जिन पुत्रों को, जिन परिवार को, जिन यारों को, दोस्तों को पाकर आप बहुत चिपक रहे, तेरे बिना क्या जीना, तो समझ लेना कि दुख का पहाड़ आप बुला रहे हो। जो स्नेह परमेश्वर को करना चाहिए वो अगर लवरी की बॉडी को किया या लवर के बॉडी को किया तो जरूर जल्दी कमजोरी आएगी और झगड़ा बिल्कुल होके ही रहेगा। एक बाबा जी भिक्षा लेने गए थे, मस्त जय जय सियाराम, लेकिन कौन सुने उस सीधे साधे सियाराम वाले बाबा की आवाज। अंदर झगड़ा हो रहा है, वो बोलता है मैंने बड़ी गलती की शादी करके, रान मेरे को क्या पता कि ऐसी ज्वालामुखी मिलेगी। वो बोलती है मैंने अपना जीवन गमाया, मुझे क्या पता कि तुम्हारे जैसा आदमी ऐसा निकलेगा। अंदर झगड़े की धमाधमी फायरिंग हो रही थी एक दूसरे। बाबा जी ने देखा कि फायर ब्रिगेड तो बाहर की आग बुझाती है लेकिन साधु बाबा तो घर की आग बुझाते हैं। अब रोटी का टुकड़ा मिले चाहे न मिले, इन बिचारों को तो शांति मिलना चाहिए। बाबा जी ने खटखटाया दरवाजा, जय जय सियाराम, सुनते नहीं भाई, क्या बात है, नारायण हरि। दरवाजा खुला, दोनों पति पत्नी झगड़ रहे थे। माई आई, बोले बाबा मैं तो लुट गई बाबा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। बोले बिटिया क्या हुआ, दुखी आदमी को बेटा या बेटी अगर कोई बुजुर्ग साधु कहता है तो उसका दुख और उभरता है। वो आंसू बहाती हुई बाबा को कहती, बाबा मैं तो लुट गई, बाबा मेरा तो कोई नहीं दुनिया में। बाबा हम कॉलेज में जाते थे, ये मेरे को बोलते थे चंद्रमुखी है तू चंद्रमुखी, एक रात में दो दो चांद खिले, एक गुंगट में एक बद्री में, बद्री का चांद तो सबका है, गुंगट का चांद तो अपना है, मुझे चंद्रमुखी बोलता था बाबा। हमारा लव मेरे जुआ, मेरी माँ ने रोका, मेरी भाभी ने रोका, मेरी छोटी बहन ने रोका, बड़ी बहन ने भी मेरे को बहुत समझाया लेकिन बाबा मैं अंधी हो गई। मैंने रजिस्टर मैरिज पर सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर तो क्या करा, अपने जीवन में एक छुरा भोंक दिया बाबा। मैंने शादी हो गई, साल भर बीता न बीता, मेरे को बोलता है कि रान तू तो सूर्यमुखी है, सूर्यमुखी है रान तू सूर्यमुखी। बाबा वो चंद्रमुखी कहने वाला अब मुझे सूर्यमुखी कहने लगा। मैं घूंट भर भर के जीती और कोने में रोती और आंसू बहाती क्योंकि कुटुंब के साथ भी मेरा नाता टूट गया था। कुल खानदान की मर्यादा को तोड़कर हमें काम में अंधे होकर लव मैरिज कर डाला हमने। आप कुटुम्बी के क्या मुंह ले जाऊं बाबा, मैं खोने में आंसू बहाती जीवन घसीटती आई। बाबा ये तीसरा साल है, मेरे को बोलता है रान तू तो ज्वालामुखी है, तू तो ज्वालामुखी है बाबा, मुझे तो तीर चुभते हैं, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा महाराज
इस उल्टा के चक्कर में मत आइयो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। महाराज तुम सुनो, जय सियाराम मत करो। महाराज मैं कॉलेज में नहीं जाता तो मेरे को दूसरे दिन बोलती प्राणनाथ तुम नहीं आते तो रिसेस में पानी की घूंट भी मैं नहीं पीती हूं। प्राणनाथ बाबा जी शादी हुई, एक आध साल बीता न बीता, मैं खाली प्राणनाथ में से नाथ हो गया कि नाथ रोटी वहां पड़ी और सब्जी बना लीजियो। जय सियाराम। नाथ सब्जी धरी है, रोटी बना लीजियो और बर्तन मांझ लीजियो। और तो चली नौकरी। साल भर बीता न बीता, प्राणनाथ में से मैं अकेला नाथ हो गया। और बाबा जी अब मैं क्या कहूं आपको, मुझे ये घर का छोरा भी संभालना पड़ता, बच्चे को भी मैं संभालूं और उसकी गंदगी भी मैं साफ करूं, उसके कपड़े भी मैं बदलूं, नौकरी भी करता हूं और ये सहेलियों के साथ कभी क्लब में कभी इधर कभी उधर। बाबा जी अब तो मैं प्राणनाथ में से अकेला नाथ बचा था, हंसू बहाकर जिंदगी बिता रहा था, अब तो मुझे अनाथ कर दिया महाराज, मैं तो मर गए। रे यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। जवान समझते कि जिंदगी मजा लेने के लिए है, लेकिन जो मजा जहां से मिलता है उस अंतर्यामी ईश्वर से विमुख होकर हार मास से मजा लिया, ठोकर खानी ही पड़ेगी। ये उन लवर लवरी की कथा कहानी नहीं है, आप और हमारे जीवन की गाथा है। जयराम जी की। सावधान रहिए, कर्म करने में सावधान और परिणाम भोगने में संतुष्ट रहना चाहिए। पहले जो कर्म किए उसका परिणाम भुगत रहे संतुष्ट होकर भोग लीजिए, लेकिन नया कर्म करने में सावधान, कहीं आसक्ति से चिपक तो नहीं रहे, कहीं सर्वाधार का आधार छोड़कर इस खिलौनों पर आधार तो नहीं रख रहे। मेरा बेटा मुझे सुख देगा, मेरी बेटी मुझे सुख देगी, मेरा यार मुझे सुख देगा, अरे तू काहे को कंगाल बनता है। तेरा सुख स्वरूप तेरा राम, तेरा अंतर्यामी प्रभु तुझ में है, जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार, मति न लखे जो मति लखे सो तू शुद्ध अपार। तेरा शुद्ध सुख ले, दिले तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली, ऐसा सुख पाने की कला तू किसी सतपुरुष से सीख ले, जब गोता मारे तब आनंद। सुबह होता है भीख मंगो की नाई कटोरा लेकर टकराते रहते, मिस्टर कहता है मिसिस सुख देगी, मिसिस कहता है मिस्टर सुख दे, बेटा कहता है बाप सुख दे, बाप सोचता है बेटा सुख दे, देरानी कहती जेठानी मुझे सुख दे, जेठानी कहती देरानी मुझे सुख दे, आपस में टकराते लेते लड़ते रहते। भाई साहब सुख लेने की चीज नहीं, सुख मांगने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। दूसरे को सुख देना शुरू कीजिए कृपानाथ, सुख लेने की भिख मंगाई इसको छोड़ दीजिए। जो सुख देने के रास्ते चलता है वो सुख का दाता होता है, उसका सुख का झरना अंतर्यामी प्रकट कर देता है और वो सुखी रहता है, और जो सुख मांगता फिरता है वो भिखारी दुखी ही रहता है। सुख लेने की चीज नहीं, खबरदार हो जाओ। पत्नी से, पति से, मित्र से, कुटुंब से, किसी से सुख लेने के लिए व्यवहार न करो, सुख देने के लिए व्यवहार करो। मान लेने के लिए व्यवहार मत करो, मान देने के लिए व्यवहार करो। जो मान का दाता है और सुख का दाता है वो अपमानित कैसे होगा। श्री रामचंद्र जी मान की भीख नहीं मांगते, मान के दाता है। रामचंद्र जी सुख की भीख नहीं मांगते, सुख के दाता है। कृष्ण सुख की भीख नहीं मांगते, सुख के दाता है। संत महापुरुष जो उच्च कोटि के माने जाते हैं उन्होंने यही अनुकरण किया है, उन्होंने सुख और मान मांगा नहीं है, सुख और मान दिया है। एक लॉजिकल सिद्धांत है कि आप जो चीज देते हो वो वहां जाकर आपके पास ही आकर पड़ी रहती है। बिल्कुल सीधी बात। ये कानून जड़ चेतन सबके ऊपर अपना साम्राज्य चला रहा है। गुलाब का फूल गुलाबी क्यों है, कि वो सूर्य के सात रंग आते वो गुलाबी रंग देता है, उसी के पास गुलाबी रंग रहता है। पत्ते हरे क्यों है, जो साइंस पढ़े वो इस बात को मानते जानते, पत्ते हरे क्यों है कि वो हरा रंग देते हैं, इसलिए हरापन उनके पास रह गया। कोई चीज काली क्यों है कि वो काली माँ देती है, इसलिए वो काली है। और ये कपड़ा श्वेत क्यों है, रुई श्वेत क्यों है, सफेदी देते हैं तो सफेदी रह जाती है। आप जो भी देते हो आपके पास वही रह जाता है।
इसलिए आप सुख देते जाइए, मान देते जाइए। सुख लेने की बेवकूफी आप हम छोड़ दें, मान लेने की इच्छा छोड़ दें। मान पुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। जो चाह रखते मान की उनको मान मिलता है तो कम लगता है, और चाहिए और चाहिए, और कहीं कम मिला तो परेशान हो जाते, और ज्यादा मिल गया तो और ज्यादा चाहिए, या तो अहंकार हो जाता है। लेकिन जिनको मान की चाह नहीं, उनको स्वाभाविक मान मिल गया तो ईश्वर का प्रसाद है, और अपमान मिल गया तो ईश्वर की मौज है, प्रसाद है। पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश है, मिला अगर माल तो उस माल में खुश है, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश है, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश है। पूरे है वे मर्द जो हर हाल में खुश है। जीवन जीने की कला सीख लो। जैसे सूरज अंधेरे को खोजने जाए तो सूरज को अंधेरा नहीं मिलता, ऐसे आप इस ईश्वरीय सिद्धांत को पकड़ लीजिए, फिर आप दुख को खोजेंगे, दुख आपको नहीं मिलेगा। अपमान को खोजोगे, आपको अपमान नहीं मिलेगा। भले आपके परपुट गैर हाजिरी में लोग तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बकते हों, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व तो उनके सामने खड़ा होते ही तुम्हारे निंदक भी तुम्हारा दीदार करके तुम्हारी जय घोष किया बिना नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल पक्का सिद्धांत है। काहे को घबराते हो? दो चार व्यक्तियों ने निंदा की, सुकड़ मर रहे हो, 5-25 आदमी ने होय होय कर दिया तो डर रहे हो? आप अपना सिद्धांत पर रहिए। सारी दुनिया के उल्टे होकर लोग टंग जाए, लेकिन आप उस ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित रहिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। ये विघ्न बाधा और निंदा और मुसीबतें बाहर से तो जहर की लगती है, लेकिन अंदर से अमृत की बनी हुई है, जय राम जी की, आपका बल बढ़ाने के लिए आती है। आप उस आत्मदेव में जड़े गहरी डालिए। सुबह का अरुणोदय हुआ, किरणों ने पौधों को छुआ, पौधे थनगनी हो रहे, घबरा रहे। किरणों ने पूछा, वत्स क्यों घबरा रहे हो? किरणों ने पूछा, स्नेह से बेटे क्यों घबरा रहे हो? पौधों ने कहा कि रात्रि के तूफान ने लंबे लंबे वृक्षों को धराशायी कर दिया, हम इसलिए डर रहे। तूफान ने धराशायी उन्हीं वृक्षों को किया वत्स, जिनकी जड़ें कमजोर थी। दूसरे वृक्ष खड़े हैं, उनसे भी बड़े बड़े खड़े हैं, और उनसे छोटे तुम भी खड़े हो, तुम क्यों नहीं धराशायी हुए? धराशायी वही वृक्ष हुए वत्स, जिनकी जड़ें कमजोर थी। तो इस तूफान ने तुमको सचेत किया कि तुम अपनी जड़ें गहरी डालो। ऐसे दुख और सुख मान अपमान रूपी तूफान आपको सावधान करता है कि आप अपने जड़े पर ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में गहरी डालिए, ताकि मौत का बाप भी तुम्हें दुखी न कर सके। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पाइए पूर्ण परमानंद। मौत एक पड़ाव है, जैसे शिव मंदिर में राम मंदिर में सीढ़ियां चढ़ी जाती है, ऐसे ही जीव को पर ब्रह्म परमात्मा की यात्रा करने तक कई जन्मों की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। जैसे कच्चे घड़े को नेवा में तपाया जाता है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु प्रकृति की व्यवस्था है आपको तपाकर मजबूत करने के लिए। जैसे दिन के पीछे रात की आवश्यकता है, ऐसे जीवन के बाद मौत की आवश्यकता है। मरने से क्यों डरो? और मरने से डरने से कोई मरने से डरने वाला मौत से बचाए क्या? निर्भव जपे सकल पाओ मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो, इस यावर रामचंद्र के। सजाग होकर मरो। सुकरात को जहर दिया जा रहा है, जहर घोटने वाले आराम से घोट रहे। सुकरात उठ खड़े हुए कि पागल हो, क्या कर रहे हो? समय हो गया है, 5 बज रहे हैं, कब तुम जहर दे पाओगे? बोले, हम जानबूझकर धीरे धीरे घोट रहे ताकि तुम्हारे जैसा आदमी 2 सांस और ले ले। बोले, क्या हो जाएगा? जी कर देख लिया और मर के भी देख लेंगे। अब 2 श्वास ज्यादा लेने से क्या फर्क पड़ता है और कम लेने से क्या फर्क पड़ता है? जल्दी करो, लाओ, समय हो गया है। जैसे कोई शरबत का प्याला पिए, ऐसे सुकरात ने जहर का प्याला पिया। मैं धुंधुकारी के पास तुम्हें जल्दी से ले चलता हूं। धुंधुकारी ने मां को सताया, मां कुएं में कूद मरी। धुंधुकारी ने धन संपदा खोद कर ले ली और 5 कुलटा स्त्रियों को लाया। कुलटाओं ने उसकी संपत्ति हड़प कर ली। ये चाहिए खपे खपे में उसको खपा दिया। एक दिन बड़े घर से वो कोई ज्वेलरी चुरा कर लाया। 5 रास्ते जाने वाली कुलटाओं ने देखा कि ये ज्वेलरी तो लाया है, लेकिन पकड़े जाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस हमको भी रिमांड पर ले ले। उन 5 कुलटाओं ने उसे खूब दारू बारू पिलाकर सोते सोते धुंधुकारी को मार डाला। खोद कर घर को, उस जमाने टाइल्स आदि नहीं लगती थी, लिपण के जमाने, घर को खोद कर उसको गाड़ दिया और 5 कुलटा संपत्ति लेकर चली गई। धुंधुकारी प्रेत बनकर अपने घर में भटकने लगा। भागवत की कथा का हिस्सा सुना रहा हूं, आत्मविभाग का। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण अपने घर में आया, एक भयानक छाया पुरुष। देखते देखते कभी देव रूप हो जाता है, तो कभी बघेड़ा हो जाता है, तो कभी अग्नि रूप हो जाता है। वो जपी तपी गोकर्ण घबराए नहीं, लेकिन पूछा कि तुम कौन हो? आखिर अकाल मृत्यु पाए हुए कोई प्रेत हो क्या? बोलते क्यों नहीं हो? फिर भी कोई आवाज नहीं आया। धुंधुकारी का प्रेत शरीर बोलने की काबिलियत ही नहीं रखता था। गोकर्ण ने हाथ में जन अंजलि में जल लेकर भगवान नाम जप कर उस प्रेत छाया पर दे मारा, कुछ उसके पाप कटे। तब उसने कहा कि भैया, मैं तुम्हारा वो पापी अभागा भाई हूँ धुंधुकारी। मैंने बहुत दुख पाए हैं। प्यास लगती तो मैं पानी के नजीक नहीं जा सकता हूँ। लोग एकी मेकी करते, लघु शंका करते, वहां सुनकर अपनी तृप्ति अनुभव करता हूँ। भाई, मेरा हृदय तप रहा है, मैंने बहुत दुख भोगे। धुंधुकारी की दुखद वार्ता सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने क्योंकि मुख से सुना है, शंका थी कि तेरी कहीं मृत्यु हो गई। मैंने पिंडदान भी किया गया जी में, और गंगा जी में तर्पण भी किया। बोले, 1000 तर्पण कर लो, 1000 पिंड दान कर लो। मैं कोई साधारण पापी होता तो मेरी सदगति हो जाती। मैं बहुत क्रूर था, माँ का हत्यारा और निर्दोष बच्चों को कुएं और बावड़ी में फेंकने वाला, सोए हुए पिता के आंख में और नाक में सलाई भोंकने वाला, उंगली डालने वाला और मुर्दों के हाथ में रखकर भोजन खाने वाला, कुलटाओं के चक्कर में फंस मरने वाला, मैं शराबी कबाबी। मैंने कर्म करते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अभी उसके ताप से तप रहा हूं। भैया, मेरे उद्धार का उपाय करो। गोकर्ण ने कहा, रात बीती चली जा रही, तुम अभी आराम करो, कल सुबह ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके तुम्हारे उद्धार का उपाय करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने इस क्रूर पाप का प्रायश्चित, इस भयानक योनि से उद्धार का उपाय जताने में असमर्थता व्यक्त की। आखिर एक बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। ये सूर्य जो तप रहे हैं वो नहीं, ये सूर्य का आदि भौतिक स्वरूप है, दूसरा आध्यात्मिक स्वरूप जो प्रकट होता है उसको। सूर्य नारायण ने कहा कि भगवत कथा कराई जाए। भगवत कथा का आयोजन हुआ और बांस में उस प्रेत का आह्वान किया गया। एक एक दिन की कथा से बांस की एक एक गांठ खुलती गई। 7वें दिन वो देव देही पाकर सदगति को प्राप्त हुआ। अब सवाल उठता है कि बाबा जी, और लोग भी तो कथा सुन रहे थे, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? सब विमान के लिए कथा नहीं सुन रहे थे, वो तो उपवास रखकर कथा सुन रहा था, प्रेत योनि से सदगति हो और स्वर्ग में जाने की भावना से सुन रहा था। भागवत कल्प ध्रुम है, भगवत कथा जिस भावना से, जिस कामना से सुनी जाती है, वह भावना, वह कामना पूरी होती है। अगर भगवत कथा सुनने से सबके लिए विमान आए तो फिर इतनी ग्राहकी कभी नहीं हो सकती है। जयराम जी, कथा सुनो और विमान में चले जाओ तो कुटुंबी आने नहीं देंगे और आपके पैर भी इधर नहीं आएंगे। तो भगवत कथा तो अपने भाव के अनुसार फल देती है। भगवत कथा में एक एक कदम चलकर आते हो, कर्म योग करने का फल होता है। भावना से बैठकर सुनते हो, भक्ति योग का फल फलित होने लगता है। और कथा में तो सहज में ही ज्ञान वर्षा होती है, ज्ञान योग का फल होता है। अश्वमेघ 1000 कर ले, बाज पे सैकड़ों कर ले, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका 16वां हिस्सा भी पुण्य नहीं माना गया। वे बड़ भागी हैं जो 1000 कदम चलकर भगवत कथा में आते हैं। वे बड़ भागी के जो औरों को भी लाते हैं, और वो उनसे भी बड़ भागी हैं जो भगवत कथा सुनकर अपना दिल दिल भर में लगा देते हैं। हरि ओम।